हम खुश हैं कि आप सब जो इस सभा में जुड़ पाए। ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें यह टेक्नोलॉजी दी है, जिस वजह से हम भले ही हम इतने अलग अलग जगहों से हैं इस संसार में, फिर भी हम इस प्रकार मिल सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु ने इस टेक्नोलॉजी को इस वजह से आने दिया, इस वजह से तैयार होने दिया, क्योंकि इस समय की ये जरूरत है। इतने लोगों के पास वो कलीसिया में नहीं जा पा रहे, सभाओं में नहीं जा पा रहे, उन्हें घर पे बैठना पड़ता है। और ये अद्भुत है कि हमारे घरों में ही हम परमेश्वर के वचन को हर दिन सुन सकते हैं अगर हम चाहें तो। और हमारे विषय के विषय में सोचते हुए, इस महामारी के दौरान की खुशखबर और सुसमाचार का अर्थ है खुशखबर। और एक परमेश्वर की संतान के लिए हमारी पूरा जीवन सुसमाचार के अनुभव में जाता है, सुसमाचार को अनुभवने में जाता है। पर उसका अनुभव करने के लिए, उसकी संपूर्णता को अनुभव करने के लिए, हमें वहां शुरू करना चाहिए जहां परमेश्वर चाहता है हम शुरू करें। यह बिल्कुल उन बच्चों के समान है जो बालवाड़ी में जाते हैं। पहली बात जो उन्हें सिखाई जाती है वो है पढ़ना, अक्षर पढ़ना, ABCD या हिंदी में अ आ ई ई। और वैसे ही हमारे पढ़ाई की शुरुआत होती है हमारी मातृभाषा में या इंग्लिश में। और हमें यह समझना जरूरी है कि मसीही जीवन का ABC क्या है, मसीही जीवन के अ आ ई ई क्या है। कई लोग एक बड़ी कक्षा में जाने की कोशिश करते हैं बालवाड़ी किए बिना। और इसलिए अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में डालो और वो पांचवी या छठी कक्षा में जाए, एक ऊंची कक्षा में, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही उसने नहीं सीखा है, उसने ABCD नहीं सीखा है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन का ABCD क्या है, जो बाइबल खुद हमें बताती है। आइए हम निकालेंगे नीति वचन 9 उसका 10वां वचन। नीति वचन 9 उसका 10, यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मैं कहता हूं मसीह जीवन का ABC या बुद्धि का ABC यह है। इसके पहले के अध्याय में बुद्धि का प्रतिनिधित्व यीशु मसीह करता है, मानो यीशु मसीह बुद्धि है। और वही हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज से अधिक उसकी जरूरत है, ज्ञान से भी अधिक। और बुद्धि तो परमेश्वर का ज्ञान है, जो बौद्धिक ज्ञान से या बाइबल के ज्ञान से अधिक है। कई मसीहों के पास बाइबल का ज्ञान है, और मैं कई लोगों से मिला हूं जिनके पास बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान है, जो परमेश्वर को नहीं जानते बिल्कुल भी, शून्य जानकारी है परमेश्वर की। बाइबल का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से अलग है। आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो, पर आपको परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। और यहां भय इस शब्द का अर्थ है आदर करना, परमेश्वर का आदर रखना। वो ही बुद्धि का आरंभ है, वो बुद्धि का ABCD है। और इसलिए हमारे मसीह जीवन का ABC है परमेश्वर के लिए एक आदर और परमेश्वर का भय। और जब हमारा नया जन्म होता है, यह एक पहली बात है जो हमें सीखनी जरूरी है। और एक बहुत ही दुखी बात सारे मसीहों के साथ आज ये है, उनको ज्यादा वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर के भय से भी अधिक, परमेश्वर के लिए आदर से भी अधिक। क्योंकि यीशु मसीह आया परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को लेकर, और सुसमाचार को परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहा गया, वो सही है। पर जो पहले प्रेरितों के पास हमारे से ज्यादा फायदा था वो ये था, क्योंकि वो पहले उनके जीवन के 30 साल तक परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते थे। वो यहूदी थे, इसराइली लोग थे, और वो सिर्फ पुराने नियम को जानते थे, जहां अनुग्रह के विषय में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर के भय, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के भय को जानते थे। 30 साल तक उनके जीवन के, उनके माता पिता ने उनके अंदर परमेश्वर के भय को रखा और परमेश्वर के भय को सिखाया। और उसके बाद ही उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना, और उसने उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए उनका जीवन इतना बदल गया जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, उनके पास परमेश्वर के भय की, परमेश्वर के आदर की एक नींव थी जिससे उन्होंने शुरू की। और वही आज मसीहों के जीवन की एक दुख की बात है कि बचपन से उनको परमेश्वर का भय नहीं सिखाया गया। सबसे पहले वो अनुग्रह के विषय में सिखाया जाता है, संडे स्कूल में उनको सिखाया जाता है यीशु मसीह आपके लिए मरा है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। और कई मसीह बहुत कम परमेश्वर के भय के विषय में जानते हैं और इस वजह से वो पाप करते ही जाते हैं। और वो नई वाचा पर एक संदेश भी सुन सकते हैं कि पाप तुम पर सत्ता नहीं चलाएगा, प्रभुता नहीं करेगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो, पर वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान है, उनके जीवन में काम नहीं करता। पति पत्नी अभी भी झगड़ा करते हैं, गुस्से से चिल्लाते हैं, वो स्त्रियों के पास कुदृष्टि से देखते हैं, वो पोर्नोग्राफी अश्लील चीजें देखती है और वो परमेश्वर से कहते हैं कि मुझे क्षमा करो और प्रभु उनको क्षमा करता है। पर कब वो पाप पर विजय पाएंगे? मसीह इस वजह से नहीं आया कि वो सिर्फ हमारे पाप को क्षमा करे। पापों की क्षमा, जैसे मैं कई बार कहता हूं, वो पुरानी वाचा का एक संदेश है, पुराने नियम का एक संदेश है। दाऊद ने भजन 103 में कहा, धन्य है प्रभु जो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। और इसलिए वो एक नया संदेश नहीं है। नया संदेश मत्ती 1:21 में वो है कि यीशु हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा या छुटकारा करेगा। सिर्फ पापों की क्षमा नहीं, पर पापों की माफी से भी अधिक, वो उनके पापों से उनका छुटकारा या उद्धार करेगा। और ये अच्छा है कि मसीह अपने आप से सवाल करे, कितना यीशु मसीह ने मुझे अपने पापों से छुटकारा दिया है। ये नहीं कि उसने कितने मेरे पाप क्षमा किए हैं। कई मसीह इसमें आनंद करते हैं कि उनको क्षमा मिली है। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरी क्षमा प्राप्त हुई है। मैं पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया हूं और मेरे अंत तक मैं यही कहूंगा, मेरे अच्छाई से, मेरे भलाई से मेरा उद्धार नहीं हुआ है। मैं एक बुरा असफल व्यक्ति था पर यीशु ने मेरा उद्धार किया, पर जिस गड्ढे में मैं था उससे उसने मुझे उद्धार किया, उसने मेरे पापों को क्षमा किया। पर कई साल मुझे लग गए कि कैसे वो मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे सकता है। ये तभी आएगा जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे। परमेश्वर के भय के बाद हम पाप से घृणा करेंगे। परमेश्वर के भय के दो प्रकार है, एक तो जो पुराने नियम के लोग जानते थे, एक भय कि परमेश्वर कहीं मुझे चोट ना पहुंचाए। पर नई वाचा में जो भय हमारा है वो ये है कि कहीं मैं परमेश्वर को चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे अगर आपके एक बहुत प्रेम करने वाला पिता है तो आप उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। और वही परमेश्वर का भय जो मैं रखना चाहता हूं कि ऐसा भय कहीं मैं तो परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाता, जैसे मैं लोगों से रवैया करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं, जो विचार मैं रखता हूं उसके नियमों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर, मैं उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने मुझसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया मेरे लिए मरने के लिए। अगर हम परमेश्वर के आदर से शुरू करें तो वो भय से शुरू करें कि कहीं मैं परमेश्वर को दुखी ना करूं, फिर हमने एक अच्छी नींव रखी है। और जब वही कम है तो फिर हमें मन फिराव का संदेश सुनना जरूरी है। अगर हम प्रकाशित वाक्य को निकालें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य एक ऐसा पुस्तक है जो अंत के दिनों के विषय में बहुत कुछ कहता है। और जब हम इस कोरोना वायरस के विषय में सोचते हैं जो हर देश तक फैल गया है इस संसार में, कोई भी देश इससे छूटा नहीं, हमारे पूरे जीवन काल में हमने किसी ने भी ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी या महामारी जैसे उसको कहा जाता है जो हर एक देश में फैल चुका है। हर देश को इससे सावधान रहना पड़ता है। ऐसा कोई बीमारी आज तक ऐसी फैली नहीं है। क्या परमेश्वर इसको नहीं जानता क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने यह बीमारी भेजी, पर परमेश्वर कई बातों को आने की अनुमति देता है। जब आयुब बीमार हुआ, वो शैतान था जिसने उसको वो बीमारी दी, पर परमेश्वर को उसको आने की अनुमति दी। और परमेश्वर ने इस महामारी को भी आने की अनुमति दी है, संसार में फैलने की अनुमति दी है। उसका क्या उद्देश्य है? मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 और 18 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 9:18, यहां भविष्य के एक दिन के विषय में लिखा है, मनुष्य के एक तिहाई मार डाली गई और जनसंख्या इस संसार की 7 अरब से भी अधिक है। और उसका एक तिहाई मतलब 2 अरब से भी ज्यादा लोग, 2 अरब लोगों से भी अधिक वो मार डाले गए 3 महामारियों के वजह से। कोरोना वायरस तो बस एक महामारी है, और आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, और ये प्रतीकात्मक भाषा है, और बुरे दुष्ट आत्माओं के विषय में ये है जो पहले भी इस अध्याय में लिखा गया है। और वो आग और गंधक जो है वो प्रतीक है अलग अलग प्रकार के, शायद जंतु के या कीटाणु के, जो बीमारी लाते हैं। और क्या हुआ, 20 वचन, बाकी मनुष्यों ने जो इन मरियों से न मरे थे उन्होंने मन नहीं फिराया। क्यों ये उद्देश्य क्या है इन महामारियों का, कि लोग अपना मन फिराए, अपने पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े। क्या उन्होंने मन फिराया? नहीं, उनमें से कईयों ने नहीं मन फिराया। किस बात से उन्होंने मन नहीं फिराया? अपने हाथों के कामों से उन्होंने मन न फिराया, जो पाप वो करते थे, दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा करने से, जो न देख न सुन न चल सकती है। और उसके बाद भी 21 वचन में उन्होंने मन नहीं फिराया, जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उनके कामों में, उनके विचारों में, उनके चोरी से भी उन्होंने मन नहीं फिराया, पापों से। 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16:8। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों से आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। याद रखिए, ये सब प्रतीकात्मक भाषा है, ये अक्षरशः नहीं लिखा, पर ये प्रतीक है जिसकी सच्चाई हम देखेंगे। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, 9वां वचन, और परमेश्वर के नाम की जिससे विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी फिर एक बार महामारी, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। वही तो बात है, परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि कम से कम ये विपत्तियों के बाद, तो इन महामारियों के बाद वो मन फिराएंगे, पर उसकी महिमा करने के लिए उन्होंने मन न फिराया। फिर 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। प्रकाशित वाक्य 16:10, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की उन्होंने निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। देखिए, ये चारों बार मन फिराने के ये शब्द आता है। और इन महामारियों का क्या उद्देश्य था? पर उन्होंने क्या किया? मन फिराने के बजाय वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते रहे। हमें यह देखना जरूरी है, जो कुछ होता है ऐसे ही उसको देखना है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो नर्क के गड्ढे से लोगों को बाहर खींचे और बीमारी के द्वारा। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर, जो परमेश्वर के पास इस वजह से मुड़े क्योंकि उनको कैंसर हुआ था और वो कैंसर की वजह से मर गए, पर वे स्वर्ग गए और उनके पास तब तक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस कैंसर से पहले। और जब उनको पता चला कि उनको वो कैंसर हुआ और वो ठीक नहीं हुए, वे परमेश्वर की ओर मुड़े और वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे उस कैंसर के लिए जिसकी वजह से वो परमेश्वर के पास मुड़े थे। और इसलिए सिर्फ बीमारी के द्वारा नहीं परमेश्वर चाहता कि हम मन फिराए, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप से पीछे मुड़े इस वजह से, क्योंकि वो हम ही को हानि पहुंचाता है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर को अपमानित करता है, पर वो हमको भी नष्ट कर रहा है। जैसे बच्चों को बुरी आदतें लगती है, या छोटे बच्चे जो मिट्टी को अपने मुंह में डालते हैं, और बच्चे जो खतरनाक बातें करते हैं जो उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे बातों से दूर रखना चाहता है जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाए और हमें जो अंतिम में नर्क में भेज दे। और परमेश्वर जैसे संभव है हमें रोकना चाहता है कि हम नर्क में ना गिर जाए। और इस वजह से वो बीमारी तक को आने देता है, महामारियों को आने देता है। ये एक प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर है, जो हमें उस नर्क के गड्ढे में गिरने से रोकना चाहता है, अपने आप को नष्ट करने से रोकना चाहता है। पर वो हमको जबरदस्ती नहीं करेगा, वो चाहता है कि हम अपना चुनाव करें। और अगर हम अपना चुनाव करेंगे और पीछे मुड़ेंगे, फिर परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पर होगा। और मन फिराव का संदेश जो है, ये सिर्फ संसार के लिए नहीं है जो नहीं फिराता। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पहले बार मन फिराव का संदेश आता है, वो संसार के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए है। कलीसिया को प्रभु कहता है कि तुम मन फिराओ, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। और महामारी के समय अच्छी खबर, खुशखबर यह है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। मन फिराव का यही अर्थ है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़कर उसके पास आ सकते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में आने की, संसार में आने की वो अनुमति देता है, खाने की कमतरता या हमारी नौकरी चले जाती है, सब कुछ इस वजह से बनाया गया ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। क्योंकि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करे तो उसने यह वायदा किया है कि सब वस्तुएं जो हमारी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान हमें मिल जाएगा, वो हमें प्रदान करेगा। यह बहुत स्पष्टता से सिखाया गया है मत्ती 6:33 में 31 से 34 तक। चिंता मत करो अगर तुम परमेश्वर के राज्य के पहले खोज करोगे तो। और परमेश्वर का राज्य, उसकी व्याख्या, वो मिशनरी वर्क नहीं है या स्वर्ग नहीं है या वो सारी बातें नहीं। परमेश्वर का राज्य इसी पृथ्वी पर है। और रोमियो 14:17 में है, रोमियो 14:17 में ये परिभाषा दी गई है, परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप, शांति और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म मतलब पाप से छुटकारा, शांति या मेल मिलाप मतलब परमेश्वर से, क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, और शांति मनुष्यों के साथ मेल मिलाप क्योंकि हम झगड़ा करना रोक देते हैं, और आनंद हमारे हृदयों में प्रभु का आनंद जो हमारा सामर्थ्य है, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही परमेश्वर का राज्य है रोमियो 14:17 में। और इसलिए अगर हम पहले उस राज्य के खोजी बने, धर्म के खोजी, शांति मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद के खोजी, तो जो कोई हमारी जरूरत है, प्रभु यहां इस वजह से नहीं है कि वो हमें लखपति बनाए, पर हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, रोटी कपड़ा और मकान और हमारे बच्चों की पढ़ाई ताकि वो भी अपने पैसे कमा सके, प्रभु वो सब करेगा। और इसलिए वो सब बातों की रचना इस प्रकार करता है मसीहों के लिए भी, ताकि हम मन फिराए। और जैसे मैंने कहा प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक में, परमेश्वर सबसे पहले प्रभु तो उन कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को संदेश देता है, और उसमें से 5 कलीसियाएं बहुत ज्यादा पीछे फिसल चुके थे, और प्रेरितों के बाद शायद 40 या 50 वर्षों के बाद की ये बात है। एक प्रेरित तो तब भी जीवित था, यूहन्ना, बाकी सब मर चुके थे। पर इतने जल्दी, पहले शताब्दी के अंत के पहले, शायद 95 ईस्वी सन में, पेंटिकॉस्ट के 65 वर्षों बाद, जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर आया था और कलीसिया का जन्म हुआ था इतने अद्भुत सामर्थ्य के साथ, और अद्भुत कलीसियाओं की स्थापना की गई उन प्रेरितों के द्वारा, पर 50-60 वर्षों के बाद वो इतने पीछे फिसले हुए एक अवस्था में है, कई उनमें से कई कलीसिया, क्योंकि वे सत्य से पीछे मुड़ गए थे जो प्रेरितों ने प्रचार किया था। और वो आज भी सच है, कई कलीसियाएं वो पीछे फिसल चुके हैं, और प्रभु का उनको संदेश यही है, वही संदेश जो इन 5 कलीसियाओं को था, मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वां वचन, तो अपने पहले सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, तू वहां से गिर चुका है और मन फिरा। प्रकाशित परमेश्वर इस कलीसिया और इसके अगुआ क्यों कहते हैं, तू वैसा मुझसे प्रेम नहीं करता जैसे तू पहले मुझसे करता था, जिस दिन तेरा नया जन्म हुआ था, जहां तू इतना खुश था कि तेरे पाप क्षमा हुए, तब तू मुझसे प्रेम करता था, पर समय बीतने के बाद इस संसार का प्रेम, इस पैसे का प्रेम और पापों से प्रेम, और क्योंकि क्षमा प्राप्त आसानी से मिलता था, तुझे लगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहुत सस्ता है, नल के पानी के जैसे तू कभी भी अपना हाथ धो सकता है, और तू पाप को हल्के में लेने लगा, और धीरे धीरे मेरे लिए जो प्रेम था वो तू खो बैठा है। और अगर वैसा ही होता गया तो वो कहता है मैं तेरा दीवट निकाल दूंगा, इसका मतलब मैं उस अभिषेक को निकाल दूंगा, 5वें वचन में वो अभिषेक निकाल लूंगा, और वो अगर तू नहीं चाहता तो पश्चाताप कर, मन फिरा। पहला संदेश कलीसिया को जो प्रभु देता है वो है मन फिरा। उसके बाद पिरगमुन की कलीसिया जो पीछे फिसल चुकी थी, प्रकाशित वाक्य 2:12, और उनको भी शुरुआत में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, और वहां कुछ भक्तिमय लोग थे अंतिपास के जैसे, पर फिर वो बिलाम की शिक्षा से पीछे फिसल गए, जो पैसे के प्रेम की शिक्षा है। बिलाम भी पैसे के पीछे गया, एक ऐसा प्रचारक जो पैसे के पीछे दौड़ता है, और आज हजारों शायद लाखों प्रचारक ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे प्रचारक वो लोगों को पत्र लिखते हैं पैसे कमाने के लिए, प्रचार करते हैं पैसे पाने के लिए, वो भक्ति नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि लोगों को भक्ति में चलाए, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, कलीसिया को लोग चाहते हैं क्योंकि वो दशवांश दे ताकि वो अमीर बन सके, धनवान बन सके। वो बिलाम की शिक्षा है, 14 वचन, और प्रभु कहता है मन फिरा, 16 वचन में, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार के साथ लड़ूंगा। फिर एक बार संदेश यही था कि मन फिराओ। अगली कलीसिया है थुआतीरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2:18, और प्रभु उसको कहता है तुम्हारे पास ये इजेबल नाम की स्त्री है, कुछ भाषांतरों में अनुवादों में लिखा है कि वो तुम्हारी पत्नी है, ये एक ऐसी अगुआ था जो अपने पत्नी को कलीसिया पर नियंत्रण करने देता है। क्या आप जानते हो ऐसे कई प्रचारक हैं जो अगुए हैं, जो पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, जिनके पत्नियां पर्दों के पीछे कलीसिया पर नियंत्रण करते हैं। वो अपने पति पर नियंत्रण कर तय करते हैं क्या करना चाहते हैं। कई बार वो अपने आप असिस्टेंट पास्टर होते हैं वो पत्नियां, और वो प्रचार करते हैं और कलीसिया पर नियंत्रण करते हैं, और कलीसिया को भक्ति में नहीं चलाते बल्कि कलीसिया में एक पाप के प्रति एक हल्के रवैये को ले जाते हैं। और 21 वचन में प्रभु कहता है मैंने उसको समय दिया, अवसर दिया मन फिराने के लिए और बाकियों को भी। वो कहता है तुम मन फिराओ और जो मैंने जो तुम्हारे पास है उसको थामे रखो जब तक मैं नहीं आता। और फिर सर्दिस की कलीसिया तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य, फिर एक बार ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके पास नाम था कि वो जीवित है पर वो मरा हुआ था, वो अगुआ भी। इस कलीसिया को भी वो कहता है 17 वचन, तू मन फिरा, पीछे पीछे मुड़ अपने पाप से। और पांचवी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 3:14, और यह सबसे बुरी कलीसिया है जो बहुत धनवान है 17 वचन, और इसलिए उसको लगता है कि मेरी कोई घटी नहीं। और यह बहुत लोगों के विषय में सच है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है आज संसार में, और कई बार वो कहता है कि पैसा तो परमेश्वर की आशीष है। सचमुच हाँ, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरा करता है, पर अगर आपने बहुत पैसा कमाया तो ये मत सोचना कि वो परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि सबसे अमीर लोग इस संसार में मसीही लोग नहीं है। जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो अविश्वासी लोग हैं इस संसार में। उनको उनका पैसा कहां से मिला? वो तो दूसरे परमेश्वरों की आराधना करते हैं, उनको लगता है उनके परमेश्वर ने उनको पैसा दिया। तो ये मत कहना कि यीशु मसीह ने मुझे पैसा दिया। अगर आप ऐसा कहोगे तो इसका अर्थ यह है आप ये कह रहे हो दूसरे जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह से श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने वो लोगों को ज्यादा धन दिया है, वो आपसे ज्यादा धनवान है। ये कितना मूर्ख है। पैसा या परमेश्वर एक दान है, हम इसकी वजह से देता है हमारी जरूरतों के लिए, इसलिए नहीं कि हम घमंड करें। और यह बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, क्योंकि इस संसार का सबसे आशीषित व्यक्ति था यीशु मसीह और वो धनवान नहीं था। या सबसे श्रेष्ठ प्रेरित जो था वो पौलुस, वो धनवान नहीं था। वो कहता है कई बार उसके पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उसके विषय में आप क्या कहोगे? पर यहां एक कलीसिया है 17 वचन में जो कहती है मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं। और जो लोग ऐसे जगह आ जाते हैं वो सोचते हैं कि उनकी कोई घटी नहीं है, उनको ऐसा लगता है, और इसलिए वो नहीं जानते 17 वचन में कि वो अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगे हो चुके हैं, और इसलिए प्रभु उनके जीवन में परीक्षाएं आने देता है। और 19 में कहता है कि तू सरगर्म होकर मन फिरा। 19 वचन में जिन जिन से प्रेम करता हूं मैं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, अनुशासन देता हूं। कई बार बीमारी भी एक अनुशासन का तरीका है जिससे हम मन फिरा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब तक प्रकाशित वाक्य 9 और 16 में संसार को जब मन नहीं फिराने के विषय में प्रभु कहता है, उससे पहले वो कलीसिया को कहता है कि तुम मन फिराओ। कलीसिया को पहले संसार को मार्ग दिखाना है मन फिराने के विषय में, पाप से पीछे मुड़ने के विषय में। और आप एक मसीह होने के नाते अगर अपने जीवन से पाप से नहीं मुड़ रहे हैं तो फिर आप संसार पर दोष नहीं लगा सकते कि जब महामारी आती है वो पाप से नहीं मुड़ेंगे। अच्छी खबर, खुश खबर यह है कि परमेश्वर इस संसार में हर एक व्यक्ति की, हर एक चीज की इस वजह से उपयोग करेगा कि हम उसकी ओर वो हमें खींच ले। और ये परमेश्वर के संतानों के पास एक अद्भुत ऐसा वायदा है, और अगर आप नहीं जानते तो ये रोमियो 8:28 में है जो जहां लिखा है। ये एक अद्भुत शास्त्र है, रोमियो 8:28 से लेकर 39 वचन तक माफ करने, ये एक ही भाग है और इसकी शुरुआत यहां से होती है। हम जानते हैं, अब कई लोग इसको नहीं भी जानते, पर हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। बीमारी के विषय में क्या, महामारी के विषय में क्या, और गरीबी क्या, आपकी नौकरी चली जाती है उसके विषय में क्या, बाकी परीक्षा या कठिनाई और बीमारियों का क्या, प्रभु इन सारे बातों में एक एक करके नहीं बल्कि उन सारी बातों को एक साथ मिलाकर उससे भलाई को उत्पन्न करता है, हमारी भलाई। ये एक अद्भुत जगह है जहां हम आ सकते हैं, पर ये सबके लिए नहीं है, ये याद रखें। ये वायदा सबके लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है संसार में, नहीं, एक छोटे सीमित झुंड के लिए है, उन लोगों के लिए भी नहीं जो कहते हैं कि वो मसीही है। वो एक ऐसे झुंड के लोगों के लिए है, 28 वचन रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर से अपने बाकी हर किसी से ज्यादा या हर व्यक्ति वस्तु से ज्यादा प्रेम करते हैं। यीशु ने कहा अगर आप उसके शिष्य होना चाहो तो आपको अपने पिता माता भाई बहन पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करना पड़ेगा, नौकरी पैसा हर एक व्यक्ति से हर एक चीज से ज्यादा। और दूसरी बात जो रोमियो 8:28 में लिखा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, इसका मतलब उनका जीवन में उद्देश्य है, परमेश्वर की उद्देश्य अपने जीवन में वो पूरा करे, वो परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में करना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं यही खुशखबर है मेरे प्रिय भाई और बहन, खुशखबर इस महामारी के समय यही है, अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु से अधिक इस संसार में अपने जीवन से भी ज्यादा, और अगर आप उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो, उसका उद्देश्य पूरा करना चाहते हो, अपने जीवन में आप उसकी इच्छा करनी चाहते हो, ये दो ही शर्तें हैं यीशु में, बाकी हर व्यक्ति और हर वस्तु से अधिक प्रेम करे इस संसार में और उसकी इच्छा को अपने जीवन में आप पूरा करना चाहते हो तो यहां परमेश्वर का आपके प्रति एक वायदा है। हर एक चीज जो आपके जीवन में होती है उसको संसार अच्छा कहे या बुरा कहे, वो आपके भलाई को उत्पन्न करेगा, वो सब मिलकर आपका सर्वोत्तम सर्वोच्च से आएगा, एक एक करके नहीं बल्कि सब सारे बातें एक साथ मिलकर। और मैं इसकी गवाही देना चाहता हूं कि जब से मेरा नया जन्म हुआ, 19 की मेरी आयु थी तब, अभी 61 वर्ष से भी अधिक, इस 61 वर्ष से पहले मैं अब 81 वर्ष का हूं, यह वचन मेरे जीवन में सच्चा रहा है, सत्य रहा है, और मैं निर्भीकता से इसको कह सकता हूं, हर एक चीज जो मेरे साथ हुई है, जो आर्थिक कठिनाइयों से मैं गया, मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी पर प्रभु की सेवा के लिए, जब मैंने अपने सारे पैसे दे दिए थे परमेश्वर के काम के लिए, सारी मेरी बचत मैंने दे दी थी उस समय, और जो बीमारियों से मैं गुजरा हूं, जो मेरा विरोध हुआ है, जो सताव हुआ है, जो कठिनाइयों मैंने देखी है उन लोगों से जो सुसमाचार के विरोधी है, ये हर एक बात वो मेरे अच्छे के लिए, मेरे भलाई के लिए बनी है, उसने मुझे एक बेहतर मसीह बनाया है। उदाहरण स्वरूप अगर लोग मेरी घृणा नहीं करते, मुझसे बैर नहीं रखते, फिर मैं कैसे उस आज्ञा को मानता कि जो तुमसे अपने बैरियों से प्रेम रखो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जो मेरे बैरी है, क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की कि मैं एक आज्ञा रख सकूं जो मैं नहीं रख पाता अगर वो मेरे बैरी नहीं बनते तो। अगर लोग मुझे नहीं सताते मेरे विश्वास के लिए और मसीह के लिए खड़े होने के लिए और नई वाचा के सत्य के लिए, वो मुझे नहीं सताते, नहीं तकलीफ देते, फिर मैं कैसे उस वचन को आज्ञा मानता जो लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सताया, और इसलिए जो कुछ मेरे लिए होता है वो अच्छे भलाई को उत्पन्न करता है, मुझे बेहतर मसीह बनाता है। कुछ वचनों को मैं आज्ञा मान सकता हूं जो मैं नहीं मान पाता अगर ये लोग मुझे तकलीफ नहीं देते या चोट नहीं पहुंचाते या सताते नहीं, और उन्होंने मुझे दिखाया कि इन उन सब के बीच में मैं प्रभु में आनंद रख सकता हूं कि उनका जो विरोध है, उनके जो बुरे विचार है, बुरे योजनाएं हैं, वो प्रभु के आनंद को मुझसे नहीं छीन सकते, मेरे मन से नहीं निकाल सकते। ये क्या अद्भुत अनुभव है हर एक चीज पर। अगर आपका इकलौता उद्देश्य ये है कि मैं एक आरामदायक जीवन जीना चाहता हूं, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं एक अच्छे घर में जीना चाहता हूं, मेरे बच्चों के विवाह में देखना चाहता हूं, सेटल्ड देखना चाहता हूं, एक अच्छा रिटायरमेंट का जीवन में, भाई मेरे पास आपके लिए कोई वायदा नहीं है। आप जीवन जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, बाइबल के वचन में से आपके लिए कुछ भी प्रोत्साहन और सांत्वन नहीं है। पर अगर दूसरी ओर अगर आपका उद्देश्य यीशु मसीह से प्रेम करना है सबसे बढ़कर और परमेश्वर के महिमा के लिए जीना है, एक जलवंत गवाह बनकर आपको जीना है इस सुसमाचार के सत्य के लिए, और अपने बच्चों को भी आप वैसे ही बढ़ाना चाहते हो, और अपने पैसे और अपने घर और अपने पढ़ाई में अगर आप महिमा नहीं करते, और जो कुछ आपने इस पृथ्वी पर हासिल किया है उसमें, पर आप कहते हो कि एक ही बात जिसमें मैं महिमा कर सकता हूं वो यीशु मसीह खुद और जो उसने आपके लिए किया है, फिर रोमियो 8:28 वो आपके लिए है। इस महामारी के समय भी यही सुसमाचार है, यही खुशखबर है, वो आपके भलाई को उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ आपको फायदा नहीं होगा, कैसे वैसे आप इस महामारी में से बचकर निकलोगे बिना किसी कठिनाई के, वो जरूरी नहीं है। वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि आप उसमें से किसी भी समस्या से बचकर बाहर आओ, नहीं, पर वो आपको एक बेहतर मसीह बनाएगा उसके अंत में, जब कभी वो अंत होगा। मैं नहीं जानता ये महामारी कब खत्म होगी, पर यही अच्छी खबर है कि जब वो महामारी खत्म होगी तब मैं एक बेहतर मसीह बनूंगा, मैं वो चाहता हूं। हां, और अगर प्रभु मुझे और गहरे पानी से लेना ले जाना चाहे, अग्नि से ले जाना चाहे, तो ठीक है, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 66 अध्याय, और वहां जाने से पहले आइए हम भजन 23 देखें। भजन 23 इसको लोग अच्छे से जानते हैं, इसको चरवाहे का भजन कहा गया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। भजन 23 में लिखा है, एक सुंदर वचन है, पांचवा वचन, भजन 23:5 उसका आखिरी भाग, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, ये पवित्र आत्मा के विषय में, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा बह रहा है, जैसे यीशु ने कहा कि जीवन के जल की नदियां उनके हृदय से बह निकलेंगी। और ये बह निकलना, उमड़ना, ये उमड़ना, ये जो शब्द है ये एक इब्रानी शब्द है, जो इब्रानी से पुराने नियम का भाषांतर हुआ था, और वो इब्रानी शब्द पुराने नियम में एक ही और जगह आता है पूरे पुराने नियम में। ये बहुत जरूरी है कहां यह आता है, उमड़ना। और दूसरा भाग है भजन 23 में पहला, और दूसरा है भजन 66 में, जहां उसका 12 वचन उसका अंतिम भाग, तूने हमें विपुलता या उबार के सुख से भर दिया है, तूने वहां लाया है जहां हमारे कटोरे उमड़ते हैं। और सवाल यह है कि प्रभु कैसे हमें उस जगह ला सकता है, विपुलता के जगह या उबार के सुख से भर देना, वो जगह कैसे प्रभु लाता है। ध्यान से सुनिए भजन 66 उसका 10 वचन, तूने हमें जांच लिया है परमेश्वर, तूने हमें चांदी के समान ताया था, वो अग्नि में आत्मिक तौर पर उनको आग में डाला गया, तूने हमको जाल में फंसाया, मतलब आपने हमें ऐसे कठिन जगहों में लाया, आर्थिक परिस्थितियां, नौकरी चले जाने, ये सारी चीजें जो जिसकी वजह से मुझे लगता था मानो मैं जाल में फंस चुका है, उसके ऊपर भी हमारी कटी पर भारी बोझ तूने बांधा है, एक बड़ा बोझ, एक वजन मेरे ऊपर, एक बोझ जो मुझे जो दबा रहे हैं, और उससे भी ऊपर तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, मेरे सिर के ऊपर से उनको कुचलने तूने दिया, वो मुझे नीचे डाल सके, और उसके अंत में तूने आग में मुझे डाला आत्मिक तौर पर, और कई कठिन परिस्थितियां आग जैसे, और आग से निकालकर गहरे पानी में तूने मुझे डाला, और उन सारे के बीच में, इन सारे परीक्षाओं के बीच में तूने हमको उबार के सुख से भर दिया, या ऐसे जगह लाया जहां जीवन जल की नदियां मुझसे बह देती हैं, एक विपुलता की जगह। और परमेश्वर हमको कठिनाइयों से लाता है एक विपुलता की जगह पे, और हमको परीक्षाओं को उससे ही देखना है जैसे जिम के अंदर जो मशीन्स होते हैं, एक जिम या एक व्यायामशाला जो होती है, वहां लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं अपने मसल्स बनाने को, मांसपेशियां बनाने को, और उस जिम के बाहर एक बहुत ही मसल्स के आदमी का चेहरा होता है, पिक्चर होता है, फोटो होता है, और लोग कहते हैं तुम भी ऐसी बॉडी बनाओगे अगर तुम इस जिम में आ सकते हो तो। और लोग ऐसे मसल्स बनाते भी है, इस हमारे शरीर में ऐसे मसल्स है, जब मैं उन लोगों के चित्र को देखता हूं मैं अचंभित होता हूं कि इतने मसल्स एक जिम में जाकर लोग बना सकते हैं, और लोग वहां जाकर, पर वो मसल्स बनाने का एक ही जरिया है, अगर हम उन मांसपेशियों को तनाव को महसूस करवाए उस अलग अलग मशीन्स के द्वारा जिम में, हाथ में, पैर में, आपके मुंडी में, आपके कंधों में, आपके पेट में, छाती में, उस सारे जो मांसपेशियां हैं, वो सारे मसल्स जब वो तनाव को महसूस करते हैं, खिंचाव को महसूस करते हैं, उस प्रकार से वो मसल्स बन जाते हैं। और वो सारे जो मशीन है वो इसी वजह से है ताकि लोग के मांसपेशियों में वो तनाव और खिंचाव महसूस हो, और वैसे ही परमेश्वर हमको भी मजबूत बनाता है। और इसलिए अगर हम इन जो मनुष्य जिम में नहीं जाता वो मसल्स नहीं बना सकता, वो अगर एक्सरसाइज नहीं करे, वो तनाव और खिंचाव को न महसूस करे, तो वो कभी मजबूत नहीं बनेगा। और एक मसीह जो कभी परीक्षाओं में नहीं जाता, कभी किसी टेंशन से नहीं जाता, वो कभी मजबूत नहीं बनेगा। और एक सच्चा मसीही वो पाएगा कि महामारी में भी परमेश्वर उसको एक विपुलता की जगह लाएगा जहां जीवन जल की नदियां उससे बहेंगी, अगर वो सही प्रतिक्रिया देगा तो। और उसकी शुरुआत होती है परमेश्वर का आदर करने से। मैं पाप से दूर रहने वाला हूं, रोमियो 8:28 में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उसके आगे मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो 8 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रोक छोड़ा, रोमियो 8:32, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया उस क्रूस पर, क्या वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। क्या आपको कोई संदेह है, कोई शक है, तो इस वजन से आपका सारा चिंता और भय निकल जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा पर उस क्रूस पर आपके लिए दे दिया, वो क्यों बाकी चीजें आपको और नहीं देगा। जब आप एक पापी थे उसने आपसे प्रेम किया, जब हम पापी थे, अब तो हम उसके बच्चे हैं, क्या वो और हमारी देखभाल नहीं करेगा। दूसरा उदाहरण देने के लिए, हम सड़क के भिखारी थे और उसने तब हमें उठाया और हमें अपने बच्चे बनाया, और अब जब हम उसके संतान हैं, क्या वो हमारे लिए और नहीं करेगा? जरूर। और फिर आगे लिखा, जो कुछ हो जाए मैं इस बारे में निश्चित हूं कि इन सारी बातों में, 37 वचन, पहले 35 वचन में पढ़ता हूं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार या महामारी हम जोड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इन सब बातों में। परंतु एक महामारी के समय में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। लड़कर विजय पाना यही एक बड़ी बात है, पर यहां लिखा है जयवंत से भी बढ़कर, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमें, जो प्रेम करता है वो देता है। परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे प्रति, वो हमें मजबूत बनाए रखता है इस महामारी के समय। और वही शैतान चाहता है कि आप उस पर शक करें, संदेह करें, और परमेश्वर, शैतान यही चाहते हैं कि आप इस पर शक करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। यह बकवास है, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने इतना प्रेम किया कि अपना बेटा दे दे, और मेरे जरूरत के समय वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, असंभव है। वो मुझे उस नदी के आधे पार ले जाके बीच में नहीं छोड़ देगा कि मैं तुझसे थक गया, और वो मुझे डूबने के लिए नहीं छोड़ेगा। नहीं, कितनी भी बड़ी वेव्स क्यों ना आ जाए, वो मुझे अगले और ले जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, वो जब कभी हुआ होगा, जब मसीह आपके जीवन में आया, क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर भविष्य को जानता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर पहले से जानता था, कई सालों पहले, शायद 20 साल पहले आपने नया जन्म पा दिया, 10 साल पहले या 5 साल पहले या 50 साल पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप विश्वास रखते हो जब परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया, वो भविष्य में देख सकता था और देख पाता था हर एक बुरी बात जो आप करने वाले हो, हर एक गलत बात, हर एक बुरी चीज जो आप करने वाले थे? आपका परमेश्वर के संतान बनने के बाद क्या आप सोचते हो परमेश्वर जानता था? हां जरूर, और उसके बावजूद उसने आपको चुन लिया। वो हमारा दुल्हा है, उसने हमें चुना ताकि हम उसकी दुल्हन बन सके। मैं कई बार पतियों से पूछता हूं, बाइबल कहती है कि हमें अपने पत्नियों से वैसा प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम रखा, और मैं पतियों से यह प्रश्न करता हूं, अब जो तुम इतने सालों से विवाहित हो, शायद 15, 20, 25 सालों से, और तुमने अपने पत्नी के सारे दोष, सारी कमियां देखी है, सारी बुरी बातें जो उसने की, जो बुरी बात तरीके से उसने आपसे बात की, अगर आप पहले से इसको जानते थे विवाह से पहले, क्या आप तभी उसको चुनते? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई पति अगर ईमानदार है तो वो कहेंगे नहीं, मैं उसको नहीं चुनता, और अगर आप किसी और को चुनते तो शायद वो इससे भी बुरी निकलती, बदतर निकलती, ये ना भूले। पर दिलचस्प बात यह है, यीशु मसीह सारी बुरी बातें जानता था जो हम करते थे, कर सकते थे आगे भविष्य में, हमको चुनने से पहले वो जानता था, क्योंकि वो भविष्य को पहले से जानता है, और वो सारी बुरी बातें जानता है जो 20 साल में, अगले 20 साल में आप करोगे, या यीशु आने के पहले आप करने वाले हो, और उसने फिर भी आपको चुना। क्या यह अद्भुत नहीं है? फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसका फायदा उठाना है, उसके प्रेम का फायदा उठाकर पाप पे जीना है? हमें शर्म आनी चाहिए अगर यह हमारी प्रतिक्रिया हुई तो। प्रभु मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे प्रेम के प्रतिक्रिया इस प्रकार से, इतने स्वार्थी तरीके से दी है। मैं प्रतिक्रिया इस प्रकार देना चाहता हूं उसी प्रेम से जो तूने मुझसे प्रेम किया। वैसे हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस सत्य को जानकर कि यीशु, जो हमारी सारी बुरी बातों को जानकर, जो हम सोचते या बोलते या करते, फिर भी उसने हमें चुन लिया और उसने हमें अपनी संतान बनाया। हमारी कृतज्ञता कितनी ही बड़ी होनी चाहिए। मन फिराओ अपने पाप से, जो कुछ आप जानते हो पाप है, जो परमेश्वर को अपमानित करता है, उसे पीछे मुड़ो। परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, यह भय कि कहीं आप परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचा, उसको दुख नहीं, क्या आपने उसको दुखित किया है? मेरे भाई, मेरे बहन, अपने जीवन को परख कर देखिए, क्या आप यीशु मसीह को दुख ला रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो? अपने स्वर्गीय पिता को क्या आप चोट पहुंचा रहे हो? आप जैसे बात करते हो, जैसे आप लोगों से बर्ताव करते हो, आप लोगों को क्षमा नहीं करते? ये एक बात है जो परमेश्वर मेरे हृदय पर बहुत जोर देता है कि मैं उस पर जोर दूं अपने प्रचार में, हर एक व्यक्ति को क्षमा करो। कई लोग, उनके जीवन बहुत बुरे होते हैं क्योंकि वो क्षमा नहीं करते दूसरों को। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरूरी सवाल, क्या आपकी एक बहुत कठिन सांस है? क्या आपने उसको क्षमा किया है जो कुछ बुरा उसने आपके प्रति किया है उसके लिए? क्या आपको बहुत कठिन एक दामाद मिला है, या एक बहू बहुत कठिन है आपकी, या आपका बेटा बेटी जिसके वजह से आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्या आपने उनको क्षमा किया है? आप तो मसीह हो, आपको उदाहरण होना है, आपको सबसे पहले वो पाप की क्षमा करना दिखाना चाहिए किसी भी बात से पहले। क्या आपने उन लोगों को क्षमा किया है जो आपके ऑफिस में, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, आपके रिश्तेदार, आपके आजू बाजू रहने वाले, जिन लोगों ने आपकी जायदाद चुरा ली जो आपकी जायदाद थी, क्या आपने उनको क्षमा किया है? क्या आपके खिलाफ किसी ने भी बड़ा अपराध किया है, जो इससे भी बड़ा अपराध जो आपने परमेश्वर के खिलाफ किया हो? परमेश्वर के खिलाफ हमारा पाप इतना बड़ा है और उसने वो पूरा क्षमा कर दिया। वो हमें बुलाता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। और इस संघर्ष और महामारी और अनिश्चितता का समय एक ऐसा समय हो कि हम परमेश्वर के निकट आए और हमें सहायता करें कि हम सबको क्षमा करें। क्या आपने अपने पत्नी को क्षमा किया है? सारी मूर्ख बातें और बुरी बातें जो उसने आपके खिलाफ की, क्या आपने आपके पति को क्षमा किया है? क्यों उसने आपको छोड़ दिया या अविश्वास था या जो कुछ उसने किया हो, वो कहते उसने वो कितनी बुरी बात उसने की, मैं उसको नहीं क्षमा कर सकता। फिर आप जानते हो परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। मत्ती 6:14 यह बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। और अगर एक बात से हमें मन फिराने की जरूरत है, और हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कैसे महामारियों का उद्देश्य यह है कि लोग मन फिराए, और एक बात जिससे हमें मन फिराने की जरूरत है वो है लोगों को क्षमा न करना, ऐसा एक रवैया रखना, लोगों से कड़वाहट रखना। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम अपने याददाश्त से वो बातें नहीं निकाल सकते, वो जो चीजें और जो घटनाएं जो हो गई वो हमारे याददाश्त में रहेंगी, हम उससे नहीं छुटकारा पा सकते, वो बातें हमारी याददाश्त में रह जाते, पर हमारे हृदय में हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। हमारे हृदय और याददाश्त में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वो सब बुरा नहीं भूल सकता जो मैंने किया या जो दूसरों ने किया, ये तो याददाश्त की बात हो गई, पर मैं जानता हूं कि मेरा अतीत परमेश्वर यीशु के लहू से पूरा साफ हो चुका है और मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं जानता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने हर एक व्यक्ति को क्षमा किए, इसलिए मैं साफ हूं, यद्यपि वो चीजें मेरी याददाश्त में। क्या आप नहीं जानते, याद रखते उन सारी बुरी बातों को जो आपने की आपके उद्धार से पहले उद्धार से बाद, पर आप जानते हो कि आपने मन फिराया और परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, पर फिर भी आप याद है, पर आपको अपराधी नहीं लगता, दोषी नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने आपको शुद्ध किया है। और अगर यीशु के लहू ने आपके लिए इतना सब किया है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको दूसरों को दया दिखाना है? और इसलिए उसे मन फिराइए इस महामारी के समय। एक दूसरी बात जो इस समय हमारे मन में आती है वो है भय, भविष्य में क्या होगा अगर बातें ऐसे ही चलते रही, अगर महामारी अगले 2-3 साल तक चलती रही तो क्या हम जीवित रहेंगे? अगर 5 साल तक महामारी रही तो क्या? हमको लगा कुछ महीनों में महामारी चले जाएगी, अगर अगले 5 साल तक महामारी टिकी रही तो क्या होगा? मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यशया का पुस्तक उसका 8वां अध्याय, यशया 8 में और 12 और 13 वचन, उसका अंतिम भाग 12 वचन का, यशया 8:12। यहां राजद्रोह के विषय में लिखा है, यशया 8:12, ये सारे लोग उसको राजद्रोह कहते हैं, और उस राजद्रोह की जगह आप उसको महामारी पढ़ सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि यह महामारी है, यह गंभीर है और यह इतने लोगों को मारने वाला है, और वो अभी तक उसकी इलाज नहीं मिला, पर तुमको उससे भय नहीं रखना है। जिस बात से वो डरते तुमको उससे नहीं डरना है, वो उसको महामारी कहे जो चाहे वो कहे, पर जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम्हें न डरना है और न उसका भय खाना। उसके अलावा सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, 13 वचन, और वो तुम्हारा भय रहेगा। और जो बाकी लोग जिसे डरते हैं हमें उससे नहीं डरना है, हमें परमेश्वर का भय रखना है, जिसी से मैंने शुरुआत की थी। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें बहुत सुंदरता से इन वचनों का अनुवाद किया गया है। अगर तुम परमेश्वर से डरते हो फिर तुम्हें और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, महामारी से भी नहीं। अगर आप परमेश्वर का भय रखते हो फिर किसी और बात की भय रखने की जरूरत नहीं। क्या सुंदर संदेश है, अगर आप परमेश्वर से भय नहीं रखते फिर आप हर एक बात से भय रखो जो इस संसार में होता है। यह महामारी नहीं हर एक बात से डरना, पर अगर आप प्रभु से डरते हो, परमेश्वर से डरते हो, फिर आप किसी भी और बात से डरने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भय और विश्वास ये विरुद्ध है, विपरीत है। परमेश्वर में विश्वास और क्या होगा इसका भय, मेरे साथ क्या होगा इसका भय, ये विपरीत है, विरुद्ध है। जब भय आता है विश्वास चले जाता है, वो दोनों एक ही हृदय में नहीं रह सकते। जब विश्वास आता है भय भाग जाता है। आपको चुनाव करना है, आप क्या चाहते हो अपने हृदय में? एक प्रेम करने वाले पिता में विश्वास और यीशु जो हमारा उद्धार करने वाला है, या भय जो आपके अंदर अखबारों से डाला जाता है, समाचारों से डाला जाता है जो इंटरनेट पे है, और लोग क्या कहते हैं आपके आसपास में, और वो क्या कहते हैं आगे क्या होने वाला है, कोई भविष्य नहीं जानता परमेश्वर के अलावा, पर फिर भी वो कहते हैं कल ये होगा, और आप वो सब सुनते हो, वो सब सुनते हो, और अपने मन को आप इससे भर लेते हो जो लोग कहते हैं, परमेश्वर के वचन से भरने के बजाय और परमेश्वर की वायदों के बजाय, फिर आपको टेंशन में जीना पड़ेगा जिंदगी भर। पर अगर विश्वास अंदर आएगा, और विश्वास क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रार्थना करने के लिए, और उसने हमें कहा सबसे जरूरी बात जब आप प्रार्थना करो वो है विश्वास रखना। सबसे पहले तो आपको सबको क्षमा करना है, मत्ती 6, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो लोग सुनेगा भी नहीं आपकी, परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा, ये याद रखिए। भजन 66:18 में एक वचन है, भजन 66:18 जहां लिखा है, अगर मेरे मन में अनर्थ की बात होती या पाप होता, अगर मेरे मन में पाप सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास किसी के विषय एक गलत रवैया है तो प्रार्थना करके समय ना बिताए, लोग परमेश्वर आपको नहीं सुनेगा। ऐसे लोग हैं जो ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, ऑल नाइट की प्रेयर मीटिंग रखते हैं, उनमें से कई परमेश्वर कोई भी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया, उन्होंने उनके हृदय में सही नहीं किए, उनके गलत रवैये हैं, अपने पाप से उन्होंने मन नहीं फिराया, और वो प्रार्थना करते हैं, समय गवा रहे हैं वो लोग, परमेश्वर फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे व्यक्ति का फोन जो वो फोन करता है प्रार्थना करने में, जिसके हृदय में पाप है, और वो जरूरी है इसको याद रखना। और मत्ती 6 में यह भी लिखा है, 14:15 में, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती 6:14-15। और अगर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपके पास एक गलत रवैया है। और इसलिए जब प्रार्थना करो, यीशु ने कहा, ये याद रखिए कि पहले आपने दूसरों को क्षमा किया है, और दूसरा तो अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो, मत्ती 5:23-24, आप जब उस वेदी पर आए, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, पहले जाकर मेल मिलाप करो, क्षमा मांगो, अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर आपने किसी को दुखाया है और उससे क्षमा नहीं मांगे, या किसी ने आपको दुखाया और आपने उसको क्षमा नहीं किया, तो अपना समय मत गवाओ प्रार्थना करके, ये आप समय गवा रहे हो। पहले अपने हृदय को साफ करो, और उसके बाद जब आप आपके हृदय को साफ कर चुके हो, तो फिर यीशु ने कहा मत्ती 6:9, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। आपको यही प्रार्थना दोहरानी नहीं है, ये एक नमूना है, आपको इस रीति से, इस तरीके से प्रार्थना करनी है। ये तरीका क्या है, ये रीति क्या है? जब आप अपने प्रार्थना की शुरुआत करो, ये मत कहो कि प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मेरी बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये समस्या है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, नहीं, ऐसी शुरुआत मत करो। हमारी सारी समस्याएं इस वजह से है क्योंकि हम अपनी प्रार्थना ऐसे शुरू करते हैं। शुरुआत परमेश्वर से कीजिए और उसके राज्य से। क्या आप जानते हो पहले 4 शब्द बाइबल में, हिंदी में पहले 3 शब्द, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर, वो पहले 3 शब्द है हिंदी बाइबल में, हिंदी में 3 शब्द है, और वो पहले 3 शब्द आपके जीवन में होने चाहिए हर दिन, जैसे ही आप उठते हो सुबह, आदि में परमेश्वर, पहले उससे बातचीत कीजिए, उससे पहले सुनिए। उठकर बाइबल उठाने से भी पहले, जैसे ही आपकी नींद खुल जाती है, परमेश्वर से सुनिए, उसको सुनिए। और जब तुम प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। पहला वाक्य, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम वही शुरुआत करेंगे। हम एक घंटा इसी पर मनन कर सकते हैं। मेरी एक किताब है जो आपको मुफ्त में भी मिल सकती है सीएफसी के वेबसाइट पर, सीएफसी इंडिया वेबसाइट पर, cfcindia.com, वहां आप किताबों के सेक्शन में जाइए, वहां लिखा, उसका नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। वो प्रभु की प्रार्थना पर है, परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। और मैंने वहां यह बताया है कैसे हमारा पिता जो स्वर्ग में है इसका क्या अर्थ है। वो मुझे दो बातें सिखाता है मेरी प्रार्थना शुरुआत करने से पहले, बहुत जरूरी है ये याद रखना इस महामारी के समय भी। इन दो बातों, इन दो सत्यों में स्थापित होने के पहले प्रार्थना भी शुरू मत करो। जब विश्वास अंदर आएगा तब भय चले जाएगा, जब भय अंदर आएगा तो विश्वास चले जाएगा। और भय को निकालने का एक ही तरीका है विश्वास से। विश्वास एक हमारे पिता में जो स्वर्ग में है। हमारा पिता वो हमें बताता है कि स्वर्ग में ऐसा कोई है जो हमसे प्रेम करता है। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है किसी भी धरती के पिता से अधिक। यीशु ने कहा तुम बुरे होकर, उसने मत्ती 7 में यह कहा, मत्ती 7:11, जब तुम बुरे होकर, बुरे पिता होकर, इसका मतलब इस संसार का सबसे उत्तम जो पिता है वो परमेश्वर की तुलना में बुरा है, दुष्ट है। हाँ, आप में से कई पिता है, आप बहुत अच्छे माता पिता हो, आप अपने बच्चों की इतनी देखभाल करते हो, आप अपने बच्चों के लिए अपना जीवन दे दोगे, पर परमेश्वर की तुलना में, परमेश्वर के प्रेम की तुलना में आपका प्रेम शून्य है आपके बच्चों के प्रति। आप दुष्ट हो जब परमेश्वर से आपकी तुलना की। शायद आप बहुत अच्छे माता पिता हो पर परमेश्वर की तुलना में वो दुष्टता है। आप दुष्ट होकर भी, आप बुरे होकर भी मत्ती 7:11 अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इंग्लिश में लिखा है और बढ़कर क्यों ना देगा। ये पहली बात है जिसमें आपको स्थापित होना जरूरी है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है किसी भी संसार के पिता माता से ज्यादा प्रेम करने वाला, किसी भी संसारिक माता पिता से अधिक प्रेम करने वाला। यशाया 49:15 में लिखा है, परमेश्वर कहता है अगर एक माता भी अपने जन्माए हुए लड़के को या दूध पीते बच्चे को भूल जाए मैं उनको नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर एक माता है एक पिता है। और यहां लिखा है बुरे पिता होकर तुम जानते हो कैसे अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितनी अच्छी वस्तुएं देगा जो मांगते हैं। और यशाया 49 में वो कहता है 15 में, परमेश्वर कहता है मैं एक माता के समान हूं और मैं सबसे अच्छी माता हूं इस संसार में, अच्छा सबसे पिता हूं मैं इस संसार में। एक माता भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए ये तो होता ही नहीं, शायद से बहुत बार कम होता है, पर अगर वो भी भूल जाए तो मैं नहीं भूलूंगा। क्या आप इन दो सत्यों में अपने हृदयों को, कम से कम अपने हृदयों को स्थापित करोगे? मत्ती 7:11 इसको हर बार याद रखें, और यशाया 49:15, मत्ती 7:11, यशाया 49:15, परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर प्रेम करने वाला माता है, सबसे अच्छा माता पिता दुष्ट है, शून्य है परमेश्वर की तुलना में। और 1 से 100 में अगर हम गुण दें तो परमेश्वर को 100 गुण देते हैं और सबसे अच्छे माता पिता को इस संसार में 1 से भी कम गुण हम देंगे। अगर आप उस पर विश्वास रख सको, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैंने उसका अनुभव किया है 61 वर्षों के लिए। मैं ऐसे ही बुद्धि से कुछ नहीं कह रहा, किताबी बातें नहीं कह रहा, मैं एक मसीह घर में मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। मेरे पिता तो नया जन्म पाए हुए मसीह थे, उन्होंने ये प्रभु की प्रार्थना बोलना सिखाया। मेरा नया जन्म से भी पहले हर दिन मैं जब उठता था सुबह मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था, हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और एक तोते के समान मैं वो प्रार्थना करता था। और उसके बाद ही मैं अपने बिछाने से नीचे आता था, पर मैं अपने जीवन में इसको कभी नहीं जानता था। पर एक दिन आया जब मैंने मसीह को स्वीकार किया और मैं थोड़ा ज्यादा जान गया, पर जैसा समय बीतता गया मैं इस बात को समझता गया कि परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला पिता है। मैंने यह जाना कि वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु से प्रेम किया। ये दूसरा एक सत्य है जिसको आपको याद रखना है, यूहन्ना 17:23, इसको लिख कर रखिए, याद रखिए, यूहन्ना 17:23, परमेश्वर हमसे वैसा प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम रखा अगर हम उसके शिष्य है तो। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं संसार में, पर अगर आप एक शिष्य हो यीशु के तो वो उतना ही प्रेम करता है आपसे जितना यीशु से करता था। क्या आपको लगता है यीशु मसीह पर कोई हानि आ सकती थी बिना यीशु परमेश्वर के अनुमति के? क्या आपको याद है जब हेरोदेस राजा सारे बेतलेम के बच्चों को मारना चाहता था और यीशु को जानता मारना चाहता था उसके जन्म के समय, और परमेश्वर ने यूसुफ और मरिया को पहले ही चेतावनी दी और वो इजिप्ट को चले गए, और जब वो राजा आया वो नहीं था। और लूका 4 में हम पढ़ते हैं शायद 200 लोग होंगे वहां, पता नहीं, और वो आराधनालय में उसको पहाड़ के ऊपर ले गए उसको नीचे फेंकने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको उनको उसका संदेश नहीं पसंद आया, और वो उनके बीच में से निकल कर चले गए। ये कैसे हो सकता है जब 200 लोग आपको पकड़कर एक पहाड़ के चोटी पर ले जाते हैं? और मैंने कई बार इस पर सोचा है, प्रभु ये कैसे संभव है? कोई स्वर्गदूत नहीं आया, वहां कोई चमत्कार से छुटकारा नहीं हुआ, वहां लिखा है वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। और मैंने सोचा ये कैसे संभव है। मैं तर्क करने लगा, शायद ये 200 लोग ऐसे वाद करने लग गए, विवाद करने लग गए, कहां से यीशु को फेंके, यहां से फेंके या वहां से फेंके। और जैसे वो बात कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, यीशु मसीह वहां से निकल गया। और 15 मिनट बाद जब वो सहमत हुए तो यीशु वहां था ही नहीं। परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, परिस्थितियों को इतना अच्छे से वो बनाता है। मैंने इसको अपने जीवन में देखा है, पर लोगों ने मुझे सताने की कोशिश की, चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो कभी नहीं सक्षम हुए। रोमियो 8:28, ये हमारा स्वर्गीय पिता है। ये याद रखिए, इस महामारी के समय हमारे पास एक प्रेमी पिता है। दूसरी बात, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस संसार, स्वर्ग में रहने वाला मतलब जो इस संसार को चलाता है, मेरा परमेश्वर इस सृष्टि को चलाता है, वो हर एक बात के नियंत्रण में है। और अगर आपने थोड़ा सा भूगोल पढ़ा होगा, आप ग्रहों को जानते हो और सितारों को जानते हो, क्या आप जानते हो ये संसार इतना बड़ा है, ये सृष्टि इतनी बड़ी है, और ये तारे इतने लाखों लाखों मील हमसे दूर है, हमको एक बिंदु मात्र वो दिखते हैं, एक छोटे से बिंदु, पर वो बहुत बड़े हैं। वो हमारी ये जो सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली है, उससे भी बड़े हैं। क्या आप जानते हो एक ऐसा तारा है जिसमें हमारी संपूर्ण सौर प्रणाली बैठ जाए, पर वो दिखता तो एक छोटा बिंदु जैसा है, क्योंकि वो इतना दूर है। और ये सृष्टि इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, और ये पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसा, एक धूल के दाने जैसा, और इस छोटे दाने पर उससे भी छोटा दाना है जो मैं हूं और आप है। और मेरा पिता जो स्वर्ग में है, वो इस संसार को चला, इस सृष्टि को चलाता है। हम किस बात से डर रहे हैं? हमको क्यों डरना है? यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हां, क्योंकि वो मरकर जी उठा, पिता ने उसको पूरा अधिकार दिया स्वर्ग और इस पृथ्वी पर भी। वो नियंत्रण में है, इस महामारी के नियंत्रण में है। वो तय करेगा वो कब तक सीमित है, कब तक चलेगी ये महामारी, और कोई मनुष्य उसके हाथ को रोक नहीं सकता। पुराने नियम में हम एक राजा के विषय में पढ़ते हैं, बहुत दुष्ट राजा था नबूकदनेस्सर नाम का। दानियल के पुस्तक में हम इसको पढ़ते हैं। वो बेबीलोन का राजा था, और वो इतना गर्व से भर गया, घमंड से भर गया, कि परमेश्वर ने उसको दंडित दिया, और एक बहुत ही कठोर दंड उसको दिया गया, और वो एक प्राणी के जैसे बन गया। वो घास फूस खाने लग गया कई सालों तक, और फिर उसने मन फिराया जब उसको पता चला कि परमेश्वर है जिसने उसको वैसे नम्र किया था, नीचे लाया था, और परमेश्वर ने ही उसको राज्य दिया था। और जब उसने मन फिराया, और जब वो परमेश्वर के पास आया मन फिराकर, मैं चाहता हूं कि आप सुनो ये शब्दों को जो उसने कहे, दानियल 4:34-35, दानियल 4:34-35, अद्भुत ऐसे शब्द है। मैंने देखा है पूरे बाइबल में परमेश्वर के सर्वसत्ता के बारे में सबसे सिद्ध शब्द है पूरे बाइबल में। और ये एक अन्य जाति के राजा ने कहा जब उसने मन फिराया। दानियल 4:34-35, उस कठोर दंड के बाद जब वो चंगा हो गया उसकी मानसिक समस्या से, हम उसके पहले के वचनों में इसके विषय में पढ़ते हैं, 34 वचन में, मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। उसकी बुद्धि चली गई थी, वो मेंटल हो गया था। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, क्योंकि मैं यह समझ गया उसकी प्रभुता सदा की है, दानियल 4:34, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। और इसको सुने, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने, आप, मैं, आपके शत्रु, आपके दोस्त, और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं या शून्य है। ये एक वचन है जो कहता है सारे मनुष्य शून्य है परमेश्वर के सामने, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। इसको सुनिए, मेरा परमेश्वर, और अभी नबूकदनेस्सर कहता है ये उसका परमेश्वर हो गया है, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है, स्वर्ग की सेना में, स्वर्ग की सेना में, स्वर्ग में, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच भी जो उसकी इच्छा है वही वो करता है, और कोई उसको रोककर एक भी व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, उसको रोक कर, उसके हाथ को रोक सके और उसे यह सवाल कर सके कि तूने यह क्या किया है, तूने क्या किया है या क्या कर रहा है। क्या अद्भुत वचन है जिस पर हम विश्वास रखते हैं इस महामारी के समय। परमेश्वर उसकी ही इच्छा के अनुसार करता है स्वर्ग में और पृथ्वी में, और कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको प्रश्न नहीं कर सकता कि तू क्या कर रहा है, क्यों तूने ये किया है और कब तक यह चलने वाला है। पर इस सब के बीच में इस स्वर्गीय पिता, प्रेम करने वाले पिता के बच्चों के अनुसार हम विश्राम में रह सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से डरोगे, भय रखोगे, आपको किसी और बात की भय रखने की जरूरत नहीं। जब विश्वास अंदर आएगा, भय चले जाएगा बाहर। और आइए हम इस बात में, इस विश्वास में स्थापित हो जाए इन दिनों, सारे चिंता को निकाल दे। जब यीशु ये कह चुका था, तीन बार उसने कहा, मत्ती 6 में उसने कहा, हमारा पिता जो स्वर्ग में है वैसे ही हमें प्रार्थना करता है, उसका राज्य पहले आने जाए, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, मत्ती 6:11। आपको लगता है परमेश्वर उसमें दिलचस्पी नहीं रखता? आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, हमें मौका दे कि हम पैसे कमा सके ताकि हम अपने दिन भर की रोटी खरीद सके, हमें वो क्षमता दे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने पे करा सके ताकि वो बड़े होने के बाद वो पैसा कमा कर दिन भर की रोटी कमा सके। दिन भर की रोटी प्रार्थना करना एक अच्छी प्रार्थना है। हमारे पिता को जो स्वर्ग में है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हम चाहते हैं कि तेरे नाम की महिमा पाए, तेरा राज्य आए, जल्दी आ जाए यीशु मसीह, हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे ताकि हम इस संसार में जी सके और तेरी महिमा कर सके। और 12 वचन, हमारी क्षमा कर जैसे हमने औरों को क्षमा किया है, ये जरूरी है। और प्रभु हमें बुराई हर पाप से बचा, 13 वचन, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं सदा के लिए। ये सब प्रार्थना करने के बाद वो कहता है 25 वचन में, मत्ती 6:25, अपने जीवन की चिंता मत करो, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो इन दिनों, हम क्या खाएंगे, कहां से खाना मिलेगा, क्या पहनेंगे, कहां से, क्या प्राण भोजन से और शरीर से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, और आइए हम पक्षियों को देखें इस महामारी के समय, वो जानते भी नहीं, वो अखबार नहीं पढ़ते, वो इंटरनेट में नहीं जाते, और इसलिए वो चिंता नहीं करते इन बातों के। उनके पास एक स्वर्ग में पिता है जो उनकी उनकी चिंता करता है। यीशु मसीह ने विशेषकर कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, मैं चाहता हूं कि आप इस आज्ञा को मानो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में वो अखबार नहीं पढ़ते, वो समाचार नहीं सुनते, वो नहीं जानते क्या हो रहा है, वो कल के बारे में कुछ नहीं सुनते, उनको मेडिसिन नहीं मिलते, ट्रीटमेंट नहीं मिलती, हॉस्पिटल में वो नहीं जाते, पर परमेश्वर उनकी चिंता करता है। क्या तुम्हारा मूल्य उससे अधिक नहीं है? जरूर हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना है, या हमें अखबार नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आप ये विश्वास नहीं रखते, आपका उनसे अधिक मूल्य है। और उसके बाद चिंता करके क्या आप एक घंटा भी अपना जीवन बढ़ा सकते हो? यीशु कहता है एक दिन छोड़ दो, एक घंटा बढ़ा सकते हो क्या चिंता करके, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या उससे आपके जीवन का एक घंटा भी बढ़ सकता है? वो तर्क इस्तेमाल कर रहा है, आप नहीं कर सकते। फिर क्यों आप वस्त्र के चिंता करते हो? देखिए इन फूलों को, इन जंगली फूलों को, कैसे परमेश्वर उनको कपड़े पहनाता है। सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसा वस्त्र नहीं पहनाया हुआ था, इन फूलों के समान। कितने सुंदर वस्त्र है, इन रंग है इन फूलों के पास, परमेश्वर ने जो दिए हैं। कुछ मसीह कहते हैं कि हमें सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं, पर परमेश्वर ने सब फूलों को सफेद नहीं बनाया, देखिए कितने सुंदर रंग उनको दिया। परमेश्वर सफेद रंग के साथ अटका नहीं है, उसने फूलों को इतने रंग दिए, और वही उनके कपड़े हैं, वस्त्र है, वो आपको भी देगा। क्यों आप चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे? 31 वचन, क्या हम पियेंगे? ये अन्य जातीय लोग इस पर चिंता करते हैं, आज कई लोग इसकी चिंता करते हैं, अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के चिंता करते हैं। हाँ, वो चिंता करते हैं जो गैर मसीह, पर आपके पास एक स्वर्ग में पिता है जो आपसे प्रेम रखता है, जो इस संसार को चलाता है, और वो जानता है कि आपकी ये आवश्यकता है इन समय पर, आप क्या करना चाहिए आपको। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी बनो, 33 वचन, उसका धर्म, उसका राज्य क्या है, रोमियो 14:17, धर्म, मेल मिलाप और आनंद पवित्र आत्मा में, एक पवित्र जीवन जीने के खोजी बनो, अपने हृदय में शांति बनाए रखो, एक शुद्ध विवेक रखो, हर समय हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखो, शांति बनाए रखो जहां तक संभव है, आपकी ओर है, और उस आनंद में रहो कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर आपका पिता है, पवित्र आत्मा में आनंद। और ये सारी बातें जो आपकी जरूरत है, आपके जरूरत के अनुसार वो आपको मिल जाएगी। और यही अंतिम वचन है, 34 वचन, अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि तीन बार वो कहता है चिंता मत करो। वो कहता है हमारे पिता को हम स्वर्गीय पिता कहें, और चिंता मत करो 25 वचन, चिंता मत करो 31 वचन, चिंता मत करो 34 वचन। तीन बार चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह परमेश्वर का संदेश है इस समय, कल की चिंता मत करो। कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के दिन के लिए आज का ही दुख बहुत है, एक ही दिन के लिए जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दिनों में परमेश्वर के वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास बाइबल है जो हमें ये अद्भुत बातें बताता है जो यीशु ने सिखाया। बाइबल के लिए आप कृतज्ञ रहे, धन्यवादी रहे, आभारी रहे। कई लोगों को इन संसार में बाइबल नहीं है, आपके पास एक है और आप उसको पढ़ सकते हो। और आप अगर उसको पढ़ोगे, मैं आशा करता हूं कि आप उसको पढ़ते हो, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने इस पुस्तक को 61 वर्षों के लिए पढ़ा है, जब से मेरा नया जन्म हुआ। उसने मेरे जीवन को बदल दिया है, उसने मेरे जीवन में विश्राम लाया है, और मैं अपने परिवार को सही से बढ़ा सका हूं उस वजह से। और वो आपके लिए भी यही होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबको। आइए हम एक क्षण प्रार्थना के लिए सिर झुकाएंगे। और जैसे हमने अपने सिरों को झुकाया, क्या आप परमेश्वर को, प्रभु को मांगोगे कि वो आपको याद दिलाए जो बातें आपने सुनी, जो कुछ आपने सुना, और सही समय पर वो आपको इन बातों की याद दिलाए, उस सही शब्द को याद दिलाए जिसकी जरूरत है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से ये कर सकता है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों के लिए और दोस्तों के लिए जिन्होंने आज मुझे सुना है और जो भविष्य में इस संदेश को सुनेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सचमुच विश्वास में स्थापित हो जाए और तुझे आदर करना सीखे और एबीसी मसीह जीवन का एबीसी सीखे, और उस एबीसी से आगे बढ़कर बुद्धि के बड़े बड़े कक्षाओं में हो जाए जो आप चाहते हो कि हम सबके पास हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।